कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर जना वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरा बन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Radha Govinda Radhe Jayo Radha Damodara Radha Damodara Radha Damodara Radhe Radha Damodara Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Srila Prabhupada ki jai anant koti vaishnav bhakta vrinda ki jai granth raj srimad bhagavatam ki jai om namo bhagavate vasudevaya
om namo bhagavate vasudevaya
om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya
Om namo bhagavate vasudevaya
Narayanam namaskrityam Naram chaiva narottamam Devim saraswatim vyasam Tato jaya mudiraye Nashta prayeshu abhadreshu Nityam bhagavata sevaya Bhagavate uttama shloke Bhaktir bhavate nashtike Grantra Srimad Bhagavatam स्कंद तीन और अध्याय एक अध्याय का नाम है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न और श्लोक संख्या है 19 कृपया मेरे बात दोहराइए गाम पर यटन में द्विवेक्त वृत्ति है गाम पर यटन में द्विवेक्त वृत्ति है सदा प्लुतो दासयनो वधूता सदा प्लुतो दासयनो वधूतः अलचित स्वैर वधूत वेशो अलचित स्वैर वधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि व्रतानि चेरे हरितोषणानि काम पर्यटन में द विवेक वृत्ति सदा प्लुतो दशयनो वधूतः व्रतानि चेरे अलचित स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि विवेक वृत्ति सदा प्लुतो दशयनो वधूता अलचित स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि गांपर्यटन्मे दविवेक्त वृत्ति सदा प्लुतो दशयनो वधूतः अलक्षित स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि काम पर्यटन में विवेक्त वृत्ति सदा प्लुतो दशयनो वधूतः लक्षित स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि सदा प्लुतो दशयनो वधूत अलक्षित स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि पर्यटन में द विवेक वृत्ति सदा प्लुतो दशयनो वधूतः अलक्षित स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि गां पर्यटन में द विवेक वृत्ति सदा प्लुतो दशयनो वधूतः अलक्षित स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि गां पर्यटन में विवेक वृत्ति सदा प्लुतो दशयनो वधूतः अलक्षित स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि गां पर्यटन में विवेक वृत्ति सदा प्लुतो दशयनो वधूतः अलक्षित स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। शब्दार्थ इस प्रकार से है, गांग पृथ्वी पर, पर्यटन भ्रमण करते, मेध्या शुद्ध, विविक्त वृत्ति ही जीने के लिए स्वतंत्र पेशा, सदा सदैव आप्लुतः पवित्र किया गया, अधः पवित्र पृथ्वी पर, शयनः लेटे हुए, अवधूतः बाल नाखून इत्यादि बिना सवारे या काटे, अलक्षितः किसी के द्वारा बिना देखे हुए, स्वयं अकेले, अवधूत वेशः साधु की तरह वेश धारण किए, व्रतानि व्रत चेरे संपन्न किया, हरितोषणानि भगवान को प्रसन्न करने वाले। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद, इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृतकार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे अवधूत वेश में थे, न तो उनके बाल सवरे हुए थे, न ही लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। तात्पर्य, तीर्थयात्री का सर्व प्रमुख कर्तव्य कृतकार्य भगवान हरि को प्रसन्न करना है। तीर्थ यात्रा करते समय उसे समाज की प्रसन्नता की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे सामाजिक औपचारिकताओं या वृत्ति या वेश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे सदा भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य में लीन रहना चाहिए। इस तरह विचार तथा कर्म से शुद्ध हुआ तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा की विधि से परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभाव अखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिते तिर्षतां तमुन्धं संसारिना करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्यास सुनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। भूर्तिर्महद्भिर्यैमा पुरो विभू निर्मायसे ते यदमूषपुरुष भुङ्क्तिर्गुणान् षोडश षोडशात्मक सुलङ्कशिष्टा भगवान् वचांसि मे। यं ब्रह्मावरुडेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्ति दिव्यैस्तवैर्विदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदोसुरासुरगणादेवाय तस्मै नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भागवतम का तीसरा स्कंद प्रारंभ हुआ है। पहला ही अध्याय चल रहा है। जैसे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जैसे श्री गौर निताय की, यशोदा दामोदर की, जय श्री प्रभुपाद की। तो श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद का पहला अध्याय चल रहा है। लगभग 19वें श्लोक तक आज हम पहुंचे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि पिछला स्कंद जो दूसरा स्कंद अभी भी समाप्त हुआ, पिछले स्कंद में हमने देखा कि किस प्रकार से 10 विषय वस्तुओं का वर्णन करने के बाद पिछले स्कंद के अंतिम में शौनक ऋषि सुध गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? कि विदुर किस प्रकार से मैत्रेय मुनि को मिले, उसके बारे में ये प्रश्न पूछते हैं। और उस प्रश्न पूछ कर वो अध्याय खत्म हुआ। और ये अध्याय का जो प्रारंभ है, सुध गोस्वामी उत्तर देते हुए यह कहते हैं कि ठीक यही प्रश्न, कौन सा प्रश्न, विदुर और मैत्रेय के विषय में जो प्रश्न है, उनके संवाद के विषय में, ठीक यही प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा। तो सुखदेव गोस्वामी का स्मरण करते हैं कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने यही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से पूछा और सुखदेव गोस्वामी ने क्या बतलाया। और मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा जिससे इस अध्याय का शुरुआत हुआ। तो इस अध्याय के शुरुआत में ही प्रश्न परीक्षित महाराज का और साथ साथ में उत्तर देना प्रारंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये जो विदुर और मैत्रेय, विदुर जो मैत्रेय मुनि से मिले तो क्या हुआ, उस संवाद के बारे में प्रश्न करते हैं। देखिए इस अध्याय का नाम है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न, कि विदुर प्रश्न पूछते हैं। लेकिन अभी तक विदुर का प्रश्न आया नहीं इस अध्याय में, है ना, विदुर का प्रश्न अभी भी आया नहीं है सदा। लेकिन इस अध्याय का नाम क्या है, विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। अर्थात इस अध्याय के अभी 2-3 श्लोकों के बाद विदुर उद्धव से मिलते हैं। पहले उद्धव से मिलते हैं और उद्धव से मिलने के बाद प्रश्न करते हैं, उनसे बहुत सारे प्रश्न करते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। तो यह प्रश्न करते हैं, तो इसलिए इस अध्याय का नाम विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न है ना। तो इस अध्याय के शुरुआत में या पिछले स्कंद के अंतिम में यह प्रश्न पूछा गया कि विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिलने के बाद उस संवाद के बारे में पूछा गया। लेकिन विदुर और मैत्रेय मुनि का जो संवाद है ना, चौथे अध्याय से प्रारंभ होता है। पहला अध्याय, दूसरा और तीसरा और चौथा, ये 4 अध्याय तक विदुर और मैत्रेय का संवाद नहीं आएगा। विदुर और मैत्रेय का संवाद 5वें अध्याय से प्रारंभ होगा। लेकिन उससे पहले ये भूमिका, अभी तक ये भूमिका किस प्रकार से विदुर जी जाते हैं मैत्रेय मुनि के पास, जब मैत्रेय मुनि से मिलते हैं तब तक 5वां अध्याय से वर्णन प्रारंभ होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ही देखिए ये दो भक्तों का जो संवाद है, ये प्रश्न न जो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि शौनक ऋषि इत्यादि सबको मालूम था इस बात को, ये बात कि अगर दो भक्त मिलते हैं, विशेष करके विदुर जी जब मैत्रेय मुनि से मिले, तो उनके संवाद के बारे में जानने की इसलिए इच्छा हुई क्योंकि जब दो भक्त मिलते हैं ना तो बहुत बड़े बड़े चीजें समाज में आती हैं, है ना। जैसे समाज की रक्षा के लिए, इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने के लिए, भक्ति मार्ग में किस प्रकार से प्रगति करे, ये जब दो भक्त आपस में चर्चा करते हैं, उनके संवाद जब होता है, तब जाके ये सारे चीजें निकलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात शौनक ऋषि इत्यादि को मालूम था, इसलिए वो विस्तार से इस संवाद को जानना चाहे। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए समाज में दो व्यक्ति, कौन से व्यक्ति मिल रहे हैं उसके ऊपर चर्चा का विषय होता है। जैसे कि मान लीजिए दो चोर मिले तो कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, है ना, भगवान के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, समाज के बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से चोरी करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, दो चोर अगर मिले तो। इसी प्रकार से ठीक उसी प्रकार राजनेता अगर मिलते हैं दो, तो थोड़ा राजनीति के बारे में या समाज के बारे में या देश के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर दो साइंटिस्ट वैज्ञानिक अगर मिलते हैं तो क्या है, विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन सी नई खोज है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर भगवान के भक्त, दो भक्त भगवान के आपस में जब मिलते हैं तो भगवान विषय, भगवान के कथाओं के विषय में चर्चा होती है। तो कितना देखिए, ये जो स्कंद है, ये संवाद इतना महत्वपूर्ण है दो भक्तों के बीच का, कि पहला स्कंद 19 अध्याय, दूसरा स्कंद लगभग 10 अध्याय और तीसरा स्कंद 33 अध्याय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विदुर और मैत्रेय का संवाद है, बहुत बड़ा है स्कंद, दो पार्ट में है यह स्कंद, है ना, 33 अध्याय द्वारा रचित स्कंद है, तो बहुत महत्वपूर्ण संवाद है, क्योंकि बहुत उस संवाद को बहुत मायने रखा गया है, इसलिए यह अध्याय इतना बड़ा है, क्योंकि दो जब भक्त मिलते हैं तो निश्चित रूप से वो संवाद जो होता है ना, वो जीवों की आसक्ति से मुक्त करना, उनके मोह को नष्ट करना और संसार के लाभ हेतु और भक्ति तत्व, विशेष करके भक्ति का जो तत्व है वो प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि भागवतम में वर्णन है कि धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहाया वहां जने एन गतः सपन्था, कि क्योंकि ये जो भक्त होते हैं धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहाया, कि धर्म का जो तत्व है, भक्ति जो तत्व है, निहितम गुहाया, इन भक्तों के हृदय में छुपा रहता है, गुहाया अर्थात छुपा रहता है, धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहाया महाजनो एन गतः सम्पन्नता। तो जब आपस में ये मिलते हैं, भगवान भगवद गीता में कभी कहते हैं मच्चित्त मद प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च। इस बात को भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मच्चित्त मदगत प्राणा, जिन्होंने अपना प्राण, जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण को बना लिया, भगवान को बना लिया है, ऐसे जो भक्त जो होते हैं जब आपस में मिलते हैं, बोधयंत परस्परम, जब आपस में मिलते हैं तो कथयंतस्य माम नित्यं, भगवान की कथा के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ अन्य चीजों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से जब विदुर जी मैत्रेय मुनि को मिले तो निश्चित रूप से बहुत सारी चर्चाएं हो रही हुई रहेंगी, तो उनके संवाद के विषय में जानना चाहा, इसलिए इस प्रकार से पहले 4 अध्याय में भूमिका दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि किस तरह विदुर मैत्रेय मुनि तक पहुंचे, पहले 4 अध्याय में। तो हम इस प्रकार से श्रवण करते हुए आ रहे हैं, हम लगभग 18 श्लोकों का श्रवण कर लिया, आज 19वां श्लोक है। तो इसमें जैसे कि हम श्रवण करते हुए आए कि किस प्रकार से पहले के 5 श्लोकों में लगभग परीक्षित का प्रश्न और सुखदेव गोस्वामी का जवाब देना स्टार्ट करना ये था, और उसके बाद कैसे हम सुने कि धृतराष्ट्र के बारे में हम सुने, धृतराष्ट्र के बारे में सुने कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र जो था पुत्र मोह के कारण अंधा हो चुका था, और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वह पुत्र मोह तो था ही, पुत्र मोह के कारण अंधा तो हो ही गया था, बाहरी दृष्टिकोण से तो अंधा था लेकिन वह आंतरिक दृष्टिकोण से अर्थात आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अंधा हो चुका था वो। देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर बाहरी दृष्टिकोण से अगर अंधा है तो बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन अगर वो आंख रहते हुए भी अगर आंतरिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब अंधा हो जाता है ना तो बहुत समाज में बहुत सारी समस्या और वो अपना उसका खुद का पतन हो जाता है। इसलिए जैसे कि देखते हैं कि बिल्वा मंगल ठाकुर है ना, उनके आंख उन्होंने फोड़ लिया लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन हुए उनको, तो आंतरिक दृष्टिकोण से अगर कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है ना तब जीवन उसका खत्म हो जाता है। इसलिए बाहरी दृष्टिकोण से अंधा होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से अंधा नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र आंतरिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अंधा हो चुका था, इसलिए देखिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंधा हो चुका था इसलिए अभी पतन शुरू होगा, है ना। जैसे कि देखते हैं हम कि लच्छा अंधा हो चुका था इसलिए वो अंधा व्यक्ति जो होता है जो आंतरिक दृष्टिकोण खो देता है वह उसकी बुद्धि जो है ना हर जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है उसके। जैसे कि हम देखते हैं कि लच्छागृह में आग लगाने का प्रयास, पांडवों को मारने का प्रयास किया गया, जब मारने का प्रयास किया गया तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया धृतराष्ट्र ने, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, और भरी सभा में जब द्रौपदी को बुलाया गया, खींच कर लाया गया, उस समय भी धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला, हालांकि उसको बोलना चाहिए था क्योंकि वो राजा था। लेकिन और जुए में हारने के बाद गलत तरीके से हराया गया युधिष्ठिर महाराज को जुए में, लेकिन हारने के बाद भी गलत तरीके से हराया गया, उसके बाद भी धृतराष्ट्र कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं बोला। और पांडव को वनवास होने के बाद जब पांडव वापस आ जाते हैं वनवास के बाद, तो उनका जो अधिकार है उनका अधिकार नहीं मिला है? उनको अधिकार से वंचित कर दिया गया, उनका जो अधिकार नहीं दिया गया, उसके बाद भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोला। कहते हैं कि वह पुत्र मोह में इतना अंधा हो चुका था और साथ साथ में वह अपनी आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी खो चुका था। तो यहाँ पे देखिए धृतराष्ट्र का जो मोह है ना, धृत और राष्ट्र,
धृत मतलब राष्ट्र राष्ट्र के प्रति जो आसक्ति सीट के प्रति आसक्ति जो था ना वो बहुत प्रबल था बहुत प्रबल था क्योंकि कि देखिए कि ये जो मोह था धृतराष्ट्र का एक्चुअली जो पुत्र मोह बोला गया है ये पुत्र मोह भी एक सेकेंडरी है एक्चुअली दूसरा क्योंकि सबसे पहले संसार में व्यक्ति अपने आप को प्रेम करता है मैं बाद में मेरा होता है जैसे कि प्रभु जी ने भी कल सासुर प्रभु जी ने भी बताया इस बात को कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र से भी ज्यादा वो सीट के प्रति आसक्त था है ना पहले मैं और बाद में मेरा संसार में व्यक्ति सबसे पहले अपने से प्रेम करता है बाद में दूसरे से प्रेम करता है तो इस मैं की भावना मैं और मेरा की जो भावना है मैं और मेरा की भावना इसमें जब व्यक्ति आसक्त हो जाता है तो अंधा बन जाता है तो इस प्रकार से जैसे और ऐसे अंधे व्यक्ति को कोई भी महात्मा अगर समझाने जाए तो समझता नहीं है जैसे कि विदुर ने बहुत समझाया था धृतराष्ट्र को लेकिन नहीं समझा स्वयं भगवान शांति दूत बनकर आए थे समझाए थे लेकिन फिर भी नहीं समझा इसी प्रकार से जिस प्रकार से रावण को कितने लोगों ने समझाया था सर्वप्रथम मामा मारिच ने समझाया था जब रावण उनके पास गया था कि आप हिरण बन के जाए यहाँ सीता हरण का प्लान लेके गया था तो उस समय मारिच ने समझाया था हम दशहरा के दिन सुन रहे थे सुंदर गोपाल बाबू बता रहे थे है ना कि मामा मारिच ने समझाया कि मुझे अनुभव है वो कितने वीर है भगवान राम है तुम उनसे पंगा मत लो लेकिन कहां सुना ही नहीं और उसके बाद कहते हैं कि उनकी पतिव्रता पत्नी जो मंदोदरी ने समझाया था लेकिन नहीं समझा और उनके पुत्र प्रहस्त ने भी समझाया था कि पिताजी आप सीता को छोड़ दीजिए नहीं तो विनाश हो जाएगा लेकिन फिर भी वो नहीं समझा उसके बाद हनुमान जी ने समझाया नहीं समझा और अंतिम में जब भगवान रामचंद्र सेतु का निर्माण करने के बाद जब लंका में पहुंचे तो समुद्र के तट पे उस संध्या के समय उन्होंने विश्राम करके रात्रि वहीं पे निकाला और जब ही सुबह हुआ तो भगवान राम ने इष्ट गोष्ठी बुलाकर उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि एक अंतिम प्रस्ताव रावण के पास लेकर जाया जाए अभी भी रावण देखिए कितना उद्यम करने के बाद इतना बड़ा समुद्र सेतु बनाने के बाद जब भगवान रामचंद्र लंका में पहुंच चुके युद्ध के लिए उसके बाद भी भगवान रामचंद्र अंतिम प्रस्ताव भेजते हैं रावण के पास अंगद को भेजा जाता है अंगद जाकर समझाओ अंतिम प्रस्ताव दो कि अभी भी वो सीता को अगर छोड़ देगा तो हम यहां से वापस चले जाएंगे बिना युद्ध किए लेकिन फिर भी बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि सेम इसी प्रकार धृतराष्ट्र विनाश का स्थिति अभी आ चुका है इसलिए कुछ बुद्धि विपरीत होगी किसी का नहीं सुना भगवान कृष्ण समझा के चले गए शांति का दूध बनकर आए थे समझाए और चले गए नहीं समझा भगवान कृष्ण के जाने के बाद धृतराष्ट्र ने फिर विदुर को पूछा अभी कृष्ण भी छोड़कर चले गए हैं तो विदुर जी समझाते हैं जैसे कि हम पिछला वर्णन सुनते आ रहे हैं किस प्रकार से विदुर जी समझाए लेकिन विदुर जी समझाने के बाद भी धृतराष्ट्र समझा नहीं और विदुर जी बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं वहां पे कि किस प्रकार से तुम्हारा ये जो पुत्र है ना ये तुम्हारे नाश का कारण बनेगा इसको हटाओ पहले इसका त्याग करो जब तक तुम त्यागो नहीं इसका तब तक तुम्हारी उन्नति नहीं होगा इस विनाश का कारण है और ऐसा भी नहीं कि वो अकेले में बता रहे थे भरी सभा में वहां पे दुर्योधन बैठा हुआ था शकुनी बैठे हुए थे कर्ण बैठे हुए सबके सामने एक भक्त जो होता है ना वो कभी भी सत्य को प्रस्तुत करने के लिए कभी भी डरता नहीं है इसलिए विदुर जी महान भक्त थे भगवान के उन्होंने सत्य को प्रस्तुत करने के लिए डरे नहीं उन्होंने सत्य को प्रस्तुत किया और तुरंत ही दुर्योधन वर्णन है उन श्लोकों में कि दुर्योधन जो शकुनी और कर्ण के साथ में बैठा हुआ था इन दोनों का नाम आया है क्योंकि शकुनी के कारण दुर्योधन बिगड़ा हुआ था और कर्ण हा में हा मिलाता था इसलिए उन श्लोकों में उन दोनों का वर्णन आया हुआ है क्योंकि संगति जो रहता है ना व्यक्ति को बिगाड़ देता है संगति का बहुत महत्व है एक व्यक्ति का व्यवहार उसका आचरण कैसा है मुझके संगति से जाने कैसा है उससे पता चलता है कि वो व्यक्ति का संगति कैसा है उससे पता चल जाता है अगर उसका व्यवहार कैसा है तो उससे हम अनुमान लगा सकते कि ये कैसे व्यक्ति का संगति करता होगा तो दुर्योधन इतना दुष्ट प्रवृत्ति का इसलिए था क्योंकि उसकी संगति ना बहुत बुरी संगति थी मामा शकुनी की संगति थी कर्ण का संगत था इसलिए उन श्लोकों में बताया गया कि जो संगति है ना बहुत व्यक्ति को मार डालती है इसलिए संगति बुरे संगति से बचना चाहिए पुराणों में एक उदाहरण आता है कि एक शिकारी जो है ना शिकार खेलते खेलते वो थक गया तो उसको आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे छांव में जाकर लेट गया और लेट गया उसको नींद आ गया क्योंकि थका हुआ था तो नींद आ गया और नींद आ गया, उस समय क्या था, उस पेड़ से धूप का प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है ना, वो पेड़ के पत्तों के बीच में से उस व्यक्ति के मुख पे आ रहा था। तो अभी नींद, उसको तो नींद आ गया था, लेकिन फिर भी वो प्रकाश का जो डिस्टर्बेंस था ना, तो कभी ऐसा मुंडी हो रहा था उसका। तो इस दृश्य को जो है ना हंस ने देखा, हंस ने इस दृश्य को देखा तो बोला कि बेचारा कितना आराम कर रहा है, चलो इसकी मैं सेवा कर देता हूँ। तुरंत ही वो हंस उस पेड़ के उस जगह पे पहुंच गया जहां से वो धूप आ रहा है, उस डाली पे जाकर बैठ गया। उस डाली पे जाकर जब बैठ गया तो बैठकर अपने पंख को फैला दिया जहां से उसको धूप लग रहा था, बीच बीच में से वो पत्ता हिलता था ना तो उसको धूप लगता था, तो वहां पे बैठ के वो पंख फैलाकर बैठ गया। और कुछ ही क्षणों के बाद वहां पे उसी डाली पे एक कौवा आकर बैठ गया, उस डाली पे एक कौवा आकर बैठ गया। और कौवा आकर बैठा तो कौवा तो देखता नहीं है कि मीरा बाई का पुतला है या फिर गांधी जी का है, बैठते ही तुरंत अपना काम करता है और निकल जाता है ना। तो कौवे ने बैठा और तुरंत मल का त्याग किया और उस व्यक्ति, उस शिकारी के मुख पे जाके गिरा क्योंकि वो भी उसी डाली में बैठा हुआ था ना, उसके मुख पे जाके गिरा और उस शिकारी का तुरंत ही नींद खुल गया। और अभी देखा, ऊपर देखा, ऊपर देखा तो उस समय कौवा तो अपना काम किया निकल गया, लेकिन कौन देखा, हंस दिखा उस समय। और शिकारी ने तुरंत अपने बाण से, धनुष से उस हंस को मार डाला। हंस तीर लगा हुआ, हंस नीचे गिरा और अपने प्राण छोड़ते छोड़ते बोला, प्रभु आपने क्या किया, मैंने तो आपकी सेवा किया, आपको आपकी नींद अच्छी तरह से नींद आए, मैंने आपकी सेवा किया। और पूरे वृत्तांत को जब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था तो उस समय शिकारी ने यही कहा, तुमने बहुत सुंदर सेवा किया, लेकिन प्रॉब्लम यही था कि जब गलत व्यक्ति का सब संगति हुआ तुमको, तो तुरंत वहां से छोड़कर भाग जाना चाहिए था, उठ के चला जाना चाहिए था, तुमको उड़ जाना चाहिए था। कौवा, गलत संगति हुआ, तो गलत संगति कारण हो, तुमने संग किया तो वहां से उस जगह को त्यागा नहीं, इसलिए तुम्हारा मृत्यु हो गया। तो इस संगति का बहुत प्रभाव है। तो इस प्रकार से ये शकुनी से, कर्ण इत्यादि से गिरा हुआ ये जो दुर्योधन था, यह बिगड़ गया था। और बिगड़ा हुआ दुर्योधन वो क्या किया, विदुर जी को धिक्कारने लगा, ये हम पिछले श्लोकों में सुने, बहुत बहुत कठोर वचन कहने लगा कि तू ये रखेल का पुत्र है, दासी पुत्र है, मेरे टुकड़ों पे पड़ने वाला है, हमारे टुकड़ों पे पड़ने वाला है, हमारी संपत्ति को यूज कर रहा है, और हमारी टुकड़ों पे पल कर, हमारा रोटी खाकर, नमक खाकर, ये हमारे विपक्ष के जो लगे उनकी जासूसी कर रहा है। इस प्रकार से कठोर कठोर वचन कहा। और जिस प्रकार से वहां से वर्णन है कि किस प्रकार से विदुर जी उस जगह को छोड़कर निकल जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। आचार्य गण कहते हैं कि जब कोई, देखिए यहाँ पे विदुर जी जो ना, उनको अपमान किया गया, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर कोई विचलन नहीं हुआ, उन्होंने सहन किया उस अपमान को। आचार्य गण यहाँ पे लिखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई व्यक्ति, कहते हैं कि जैसे ही दुर्योधन ने उनको अपमान करके, धिक्कार के उनको बाहर निकाल दिया राज्य से, और निकालते समय यह बोला कि इसको प्राण दंड मत दो, इसका प्राण, इसका सांस चलते रहे, ऐसा उसको धक्का मार के बैठाओ, ये इतना दिन हमारा क्या बोलते हैं, हमारा नौकरी किया ना हमारा, इसलिए इसका सांस चलने दो और इसको निकाल दो बाहर। इतना अपमानित करने के बाद भी विदुर जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए, बिल्कुल विचलित नहीं। आचार्य गण कहते हैं कि विदुर जी ने सहन किया, कहते हैं कि जब विदुर जी ने यहां पर सहन किया, उसी समय दुर्योधन और धृतराष्ट्र उन लोग के जितने भी पुण्य थे तुरंत खत्म हो गए। ये आचार्य गण इस बात को कहते हैं कि, कहने का मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी का अपमान करता है, अगर अपमानित व्यक्ति अगर उस अपमान को सह लेता है, तो अपमान करने वाले को जितना भी पुण्य रहता है उस व्यक्ति के पास चला जाता है, तो सारे पुण्य दुर्योधन और धृतराष्ट्र के जो भी बचे कुचे पुण्य थे विदुर का सहन कर उन्होंने किया, इसलिए उनके पास ट्रांसफर हो गए सब बचे कुचे, वो भी खत्म। अभी विदुर जी निकल पड़े वहां से, ऐसे स्थान से वो निकले, जैसे कि हमने पिछले श्लोकों में, दो श्लोकों में सुन रहे थे कि ऐसे ऐसे स्थान से निकले, निकल तो गए, ये भी वर्णन है कि भगवान तीर्थाटन के लिए निकल गए, लेकिन भगवान वहां पे उपस्थित थे। जनरली हम देखते हैं कि हमारा भक्ति, हमारा जो साधन है किस चीज के लिए है, कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए है, अंतिम उद्देश्य तो वही है, लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण वहां पे उपस्थित थे, फिर भी विदुर जी चले गए तीर्थाटन पे, वहां पे तो कृष्ण उपस्थित थे। तो ये भी हमने सुना कि किस प्रकार से वो अपने आप को अयोग्य मान रहे थे। और साथ साथ में प्रभुपाद जी यह भी लिखते हैं, जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाता है वह कृष्ण के पास नहीं पहुंचता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लेते, लेकिन विदुर जी अपने आप को बहुत अयोग्य मानते थे क्योंकि मैं इन गलत लोगों का साथ संग किया हूं, इसलिए मुझे पहले पवित्र होना चाहिए, इसलिए उन्होंने तीर्थाटन करने के लिए वहां से निकल गए और ऐसे अस्थे स्थान पर निकले, जैसे हमने पिछले कल और परसों इन श्लोकों में हमने देखा कि ऐसे स्थानों से निकले जहां पे भगवान के विग्रह, भगवान विग्रह के रूप में विराजमान है। अर्थात अगर हमको तीर्थाटन के लिए भी जाना है तो ऐसे जगहों पे जाना चाहिए जहां भगवान विग्रह के रूप में विराजमान है, अन्यथा और दूसरे जगह पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे जगह पे जाएंगे तो फिर वही पिकनिक हो जाएगा वो। तो विग्रहों की बातों को यहाँ पे पिछले श्लोकों में बताया गया, क्योंकि जो विग्रहों के साथ जब हम आदान प्रदान करते हैं तो जो हमको मुख्य आनंद है ना, सेवा का आनंद है ना, वो प्राप्त होता है। चार प्रकार के आनंद बताए गए हैं शास्त्रों में। सबसे पहला है जड़ानंद, जो भौतिक जड़ वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख, प्राप्त तो होता नहीं है, जिसको हम मानते हैं जड़ वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख, जिसको जड़ानंद कहा गया है। और दूसरा ब्रह्मानंद, ब्रह्म ज्योति से प्राप्त होने वाला सुख। और तीसरा जो है प्रेमानंद, इससे ब्रह्म ज्योति से भी बढ़कर है प्रेम, भगवान से प्रेम करना। लेकिन कहते हैं इस प्रेमानंद के सुख से भी बड़ा सुख एक है, वह है सेवानंद, बड़ा सुख। रूप गोस्वामी पाद अपने भक्ति रसामृत ग्रंथ में इस बात को वर्णन करते हैं कि ये प्रेमानंद से भी बढ़कर सेवानंद सुख है, क्योंकि जब भी भगवत धाम में एक भक्त भगवान को, मान लीजिए वो भगवान बैठे हुए उनको चामर डुला रहा है, रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, चामर डुला रहा है, तो उस समय वो भगवान से उसके उसका प्रेम जो है प्रकट होने लगता है उसके हृदय में, तो उस प्रेम वश उसको अश्रु आने लगते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि ऐसे प्रेम के वशभूत होकर जो अश्रु आता है उस भक्त के अंदर, वो अश्रु को रोकने लगता है, क्योंकि वो सेवा कर रहा है, सेवा का आनंद ले रहा है, अश्रु को रोक देता है, गिरने नहीं देता है, क्योंकि अश्रु गिरा तो फिर सेवा का जो ये आनंद है, जो उच्च आनंद है, वो नहीं प्राप्त होगा। इसलिए प्रेमानंद से बढ़कर सेवा, सेवा का सुख है। एक भक्त के जीवन में एक्चुअली सेवा अगर है तो समझ लिए वो सुखी है, अगर सेवा नहीं है तो वो सुखी नहीं रहेगा, कभी भी सुखी नहीं रहेगा। तो भक्तों के जीवन में सबसे बड़ा आनंद मतलब वह सेवा है, और ये सेवा जो है विग्रहों का, विग्रहों से ही हमको प्राप्त होता है। जब विग्रह नहीं रहेंगे, यहाँ पे विग्रह नहीं रहेंगे, तुम्हारी क्या सेवा है, कुछ भी सेवा नहीं है, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से वो उन विग्रहों को, जहां पे भगवान विग्रह के रूप में विराजमान है, उनसे, क्योंकि जब इन विग्रहों की जब हम सेवा करते हैं तो इस भौतिक आसक्ति, भौतिक कलमश से हम मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होने के बाद हम शुद्ध होते हैं, क्योंकि जब तक हम इन विग्रहों की सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारी शुद्धिकरण नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य एक दृश्य को उन्होंने देखा कि एक कामी व्यक्ति एक स्त्री से बहुत आसक्त है, भगवान की शोभा यात्रा जा रही है, और वो क्या कर रहा है, उस स्त्री को छाता लेकर उसको उल्टा चल रहा है, उल्टा देखते हुए। तो इस दृश्य को जब रामानुजाचार्य ने देखा तो उस व्यक्ति को बुलाया अपने पास, बोला तुमको क्या सुख मिल रहा है उस स्त्री में, बोला उसके नेत्र बहुत सुंदर लगते हैं मुझे, इसलिए मैं देखा। उस शोभा यात्रा को छोड़कर उस स्त्री का वो उसमें आनंद ले रहा था। तो उस समय रामानुजाचार्य ने उसको सुबह बुलाया, तुम सुबह आओ मेरे पास। जब सुबह बुलाया तो उन्होंने भगवान के विग्रह रंगनाथ जी का जब दर्शन कराया तो उसके जितने भी भौतिक आसक्ति से सब खत्म हो गए। तो ये विग्रहों का जब हम सेवा पूजा करते हैं, विग्रहों के साथ अटैचमेंट अपना संबंध बनाए रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा ये जो भौतिक जगत के साथ आसक्ति हो खत्म होगा। तो इस प्रकार से विग्रहों के बारे में किस प्रकार से विदुर जी निकले। उसके बाद आज का श्लोक, आज के श्लोक में कहते हैं कि चलिए 10 मिनट और करें। तो आज का श्लोक जो है, आज के श्लोक में कहते हैं कि अवधूत वेशो स्वय अलक्षित, तीसरा लाइन श्लोक का, अवधूत वेशो स्वय अलक्षित, अवधूत विदुर जी अवधूत वेशो, जो कि अवधूत का वेश धारण करके, स्वय मतलब अपने या अनेकों लोगों से, अपने या अनेकों, प्रभुपाद जी अनेकों लोगों से कहते हैं, और अलक्षित छिप कर, अवधूत वेशो स्वय अलक्षित, इसका संधि बजा, अवधूत वेशो स्वय अलक्षित, विदुर जी अवधूत का वेश धारण करके, अवधूत वेशो और स्वय मतलब अपने लोगों से, अलक्षित मतलब छुप कर, विदुर जी अवधूत का वेश धारण करके अपने लोगों से छिप कर क्या करते थे, तो कहते सदा आप्लुत अधसयनम अवधूत, दूसरा लाइन सदा आप्लुत अधसयनम अवधूत, कहते हैं कि सदा मतलब हमेशा और आप्लुत मतलब तीर्थों में स्नान किए और अधशयनम मतलब भूमि पर शयन करते थे और अवधूत अर्थात वो बिना अवधूत की तरह बिना श्रृंगार किए वो जमीन पे सोते थे। अवधूत वेशो स्वय अलक्षित, विदुर जी अवधूत का वेश धारण करके अपनों अपने लोगों से छिपकर सदा आप्लुत अधशयनम अवधूत, हमेशा सदा मतलब हमेशा तीर्थों में स्नान करते और तीर्थों में स्नान करके भूमि पर सोते और बिना श्रृंगार अवधूत की तरह बिना श्रृंगार किए। तो कहते हैं कहने का अर्थ यह है कि हमको जब तीर्थाटन हम करते हैं तीर्थ में जाते हैं तो जो अपने लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए, कहने का तात्पर्य यही है ना कि अपने लोग, क्योंकि अपने लोग जो है हमारे पारिवारिक हमारे परिवारजन जो अपने लोग है ना वो हमेशा डिस्टर्ब करेंगे, है ना, हमेशा वो कुछ ऐसी बातों को करेंगे जो उनके साथ बीता हुआ है, स्कूल कॉलेज की बात हो या घर की बात हो या तो फ्रेंड सर्कल की बात हो, इस प्रकार की भी बातें करेंगे। इसलिए विदुर जी स्वयं अलक्षित वह अपने लोगों से छिपकर वह स्नान इत्यादि वगैरह करते थे। तो कहने का तात्पर्य कि क्या इस तीर्थाटन करने के लिए मतलब पवित्र होने के लिए क्या अपने लोगों को त्याग कर देना है, ये प्रश्न उठता है। मान लीजिए कि अपने लोगों को त्याग कर देना है तो नहीं, त्यागना नहीं है, अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है इस बात की पुष्टि नारद मुनि सातवें स्कंद के 14वें अध्याय में जहां पे एक आइडियल गृहस्थ के बारे में वो प्रवचन देते हैं वहां पे कहते हैं नारद मुनि क्या कहते हैं, ज्ञातयः पितरो पुत्रा भ्रातरः सुहृदो परे यद्वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः, कहते हैं कि अपने लोग जो यहाँ जिससे छिप रहे हैं विदुर जी स्वयं अलक्षित जिससे छिप रहे हैं ऐसे लोगों को छिपना मतलब क्या उनका त्याग करना है, तो नारद मुनि कहते हैं कि त्याग नहीं करना है। क्या कहते हैं, ज्ञातयः पितरो पुत्रः, ज्ञातयः अर्थात हमारे जो ज्ञाति के लोग हैं मतलब हमारे भाई बंधु जो हैं, और पितरो मतलब हमारा पिता और पुत्र मतलब हमारा पुत्र और भ्रातर मतलब हमारा भाई और सुहृद, हाँ सुहृद मतलब हमारा सुहृद जो भी हमारे शुभ चिंतक है, इनके साथ हमको कैसे कैसे छुपना है कैसे रहना है। तो कहते हैं यद्वदन्ति यदिच्छन्ति, यद्वदन्ति मतलब जो कहे वो कौन कौन कहे, हमारे पारिवारिक जन के लोग हमारे भाई बंधु हमारे मित्र हमारे परिवार जनक के लोग पिता पुत्र भाई सुहृद जन जो भी हो क्या वो लोग यद्वदन्ति जो भी कहे यदि इच्छन्ति उनकी जो भी इच्छा हो और उनकी वो जो भी कहे और उनकी जो भी इच्छा हो निर्ममः अर्थात ममता से रहित होकर मतलब अपने लिए कि ममता से रहित होकर चान मोदेत यद्वदन्ति यदिच्छन्ति चान मोदेत निर्ममः उनका केवल अनुमोदन करे। कहने का अर्थ है कि ये शायद प्रभुपाद जी भी बार बार बताते थे अपने मैंने भक्तों से सुना हूं कि अपने परिवार जनों को कभी भी प्रचार मत करो, क्योंकि अपने परिवार जनों का प्रचार करने जाए तो आप भी घर में ही बैठ जाएंगे, इसलिए प्रचार जब हम करते हैं ना वो बाहर के लोगों को करें, अपने अपने संबंधी जनों को इनसे जितना दूर रहे जितना करते चान उनको अनुमोदन करते हुए रहना चाहिए, ठीक है भाई तू ठीक है तू ठीक है, लेकिन इन अनुमोदन करते हुए अंदर से विरक्त होना चाहिए। इस बात को आगे के श्लोकों में नारद मुनि बताते हैं। तो स्वयं अलक्षित विदुर जी जो कि छुप कर अपने जनों से या अनेकों लोग जो है उनके परिचित उनसे छुप कर वह इस तीर्थ जगहों पे स्नान इत्यादि करते थे। फिर आगे कहते हैं कि मेद्य विव्यक्ति वृत्ति गांव पर्यटन, पहला श्लोक अरे पहला लाइन श्लोक का पहला लाइन कि मेद्य विव्यक्ति वृत्ति गांव पर्यटन, मेद्य विव्यक्ति मतलब पवित्र और सादा, पवित्र और सादा और वृत्ति मतलब आहार करते और गांव पर्यटन, गांव मतलब पृथ्वी और पर्यटन मतलब घूमते रहे, कि मेद्य वृत्ति पवित्र और सादा वृत्ति गांव पर्यटन सादा आहार करते और पृथ्वी पर घूमते रहते। तो देखिए विदुर जी अवधूत का वेश धारण करके अपनों लोगों से छिपकर क्या करते हैं, हमेशा तीर्थ में स्नान करते और भूमि पर शयन करते और श्रृंगार के रहित अवधूत की तरह और पवित्र और सादा आहार करते और पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। तो क्यों घूमते रहते पृथ्वी पर, तो अंतिम लाइन में कहते हैं क्यों घूमते रहते पृथ्वी पर, तो अंतिम लाइन में कहते हैं हरितोषणानि व्रतानि चेरे। अंतिम लाइन में हरितोषणानि व्रतानि चेरे, हरि मतलब भगवान को और व्रतानि तोषणानि मतलब प्रसन्न करने वाले और व्रतानि मतलब व्रतों को लिए, जो भगवान हरि को प्रसन्न करने वाले जितने भी व्रत है उसको धारण करते क्यों घूमते रहते हैं, हरितोषणानि व्रतानि चेरे, भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों को करते रहते हैं। तो कर जैसे कि अभी कार्तिक महीना चल रहा है तो हम कार्तिक मंत्र इन व्रतों का पालन कर रहे हैं कार्तिक मंत्र महीने का, तो इस प्रकार से वह तीर्थाटन में इन व्रतों का पालन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो विदुर जो कि एक भगवान के महान भक्त है, विदुर जी स्वयं यमराज जी है, विदुर मतलब कौन, स्वयं यमराज जी है, महान भक्त है भगवान के, और ऐसे विदुर अभी निकल पड़े हैं तीर्थाटन के लिए जो कि आज के श्लोक में कुछ उनके बारे में वर्णन है। और देखिए विदुर जी महान भक्त है भगवान के, भगवान जब संधि दूत बनकर उस जगह पे आए थे समझाने के लिए धृतराष्ट्र को सिंधुदेव, तो उस समय जब आतिथ्य स्वीकारे थे वह विदुर जी के पास, हालांकि दुर्योधन ने बहुत सारे आयोजन करके रखा हुआ था उनके सत्कार के लिए, लेकिन फिर भी महात्मा विदुर के इधर गए। और वर्णन है कि उस समय विदुर जी घर में नहीं थे, घर में विदुरानी थी, और वो इतना गरीब थे कि उनके पास इतने वस्त्र भी नहीं थे। कहते हैं कि उस समय विदुरानी घर में अकेली थी और वस्त्र थे नहीं, और वो स्नान कर रही थी, और बोलते हैं कि एक जगह पे तो वर्णन है कि विदुरानी के पास वस्त्र नहाने के लिए वस्त्र नहीं था, केवल एक ही वस्त्र था उनके घर में, वस्त्र इत्यादि का बहुत प्रॉब्लम था, उनके पास धन सम्पत्ति इतना था ही नहीं, बहुत मुश्किल से रहते थे वो लोग। तो वर्णन है कि विदुरानी के पास एक ही वस्त्र था लेकिन वो स्नान नग्न होकर स्नान कर रही थी, उसी समय भगवान कृष्ण द्वार में पहुंचे और टक 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 करने लगे, बोलने लगे मैं कृष्ण मुझे भूख लगा है। उस समय जैसे ही कृष्ण आए हैं दरवाजा खटखट कर रहे हैं, उस विदुरानी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। वो वर्णन है कि उसमें विदुरानी बिना कपड़े के नग्न अवस्था में ही दरवाजा को खोला और माइंड में केवल एक ही चीज घूम रहा था, कृष्ण को भूख लगा है, कैसे मैं कृष्ण को जल्दी से जल्दी खिलाऊं। तुरंत दरवाजा खोला और भगवान कृष्ण ने जैसे ही विदुरानी को देखा तुरंत ही अपना पीताम्बर निकालकर उसको विदुरानी को उसके शरीर अंग को ढक दिया। भगवान समझ गए उसके भाव को समझ गए भगवान कि कितनी प्रेम की वशी प्रेम में पागल हो गई विदुरानी। और उस समय विदुरानी ने कहते हैं कि उनको तुरंत ही खाने के लिए विदुरानी पाटला में बैठा दी, वो पाटला भी उल्टा रखती है, शुद्ध बुद्ध खो गई पाटला भी उल्टा रहती है, भगवान उस उल्टे पाटले के ऊपर बैठे और कहते हैं कि जब केला जब खिलाने लगी तो केला का गुदा जो है उसको फेंक रही और छिलका खिला रही है, और भगवान बहुत प्रेम से खा रहे हैं। और जब ये दृश्य चल रहा था उसी समय विदुर जी आ गए और ये दृश्य को देखकर विदुर ने विदुरानी को डांटने लगे, क्या कर रही हो तुम, छिलका खिला रहे हो, गुदा को छोड़ दिया, फेंक रही है बाहर। और जैसे ही वो विदुर जी ने डांटा तुरंत ही विदुरानी को तुरंत ही अपने होश में आ गई तुरंत ही। और फिर उसके बाद विदुर जी क्या किए, उस गुदा को उस केले को लेकर भगवान को खिलाने लगे। और भगवान कहते हैं विदुर अभी तक जो हमको प्रेम जो मिल रहा था जिससे मतलब आनंद की प्राप्ति हो रही थी, अभी इस गुदे में उस आनंद की प्राप्ति नहीं है, उस आनंद वो उस प्रकार का आनंद नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से विदुर जी महात्मा है, इस प्रकार से कैसे निकले, अभी निकलते समय इसका वर्णन है, अभी दो तीन श्लोकों में वो उद्धव से मिलेंगे, प्रभास क्षेत्र पहुंचते हैं जहां पे उनको यह पता चलता है कि सारे कौरवों का नाश हो चुका है, प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, अभी दो ही श्लोकों के बाद ये आ जाएगा, और वहां पे पता चलता है। उसके बाद वह उद्धव जी से मिलते हैं, कहते हैं कि उद्धव जी से मिलना, अभी दो तीन श्लोकों बाद उद्धव से मिल जाएंगे वो। तो उद्धव ये जो अध्याय का नाम है ना विदुर द्वारा प्रश्न, ये वहां से स्टार्ट होता है, वहां से लिया गया है कि विदुर वहां पे प्रश्न पूछते हैं उद्धव जी से, किनके बारे में, भगवान के बारे में, जो कि भगवान चले गए उनको पता चल गया था, हालांकि फिर भी पूछते हैं उन कौरवों के बारे में, भगवान के बारे में, बलराम जी के बारे में, सब पूछताछ करते हैं वहां पे। और दो तीन श्लोकों बाद वर्णन, लेकिन 36 साल के बाद विदुर जी उद्धव को मिले, 36 साल के बाद, 36 सालों के बाद उद्धव को विदुर जी मिले। इतना भ्रमण करते करते उद्धव के पास आए और उद्धव से जब उनका मिलन होता है तो उसके बाद जो चार अध्याय है ना बाकी इसके बाद का जो अध्याय है उसमें यह चलेगा, उद्धव जी का प्रवचन चलेगा भगवान की लीलाओं के बारे में, वो प्रवचन करते हैं और फिर धीरे धीरे फिर वहां से उद्धव जी से करके वहां से निकलते हैं। निकल के फिर हरिद्वार पहुंचते हैं, फिर जाके मैत्री मुनि से मिलते हैं, तब तक चौथा अध्याय आ जाएगा, फिर मैत्री और विदुर का संवाद जो आगे होगा। तो हम धीरे 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 आगे इन संवादों को हम सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।